તારીખ 29/9/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 206 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 23.
उतना ही आत्मा है और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। एकाकार ज्ञान स्वरूप आत्मा उसको जान करके ऐसा ही आत्मा है ऐसा निश्चय करके उसमें रुचि प्राप्त कर उसमें प्रीति ऐसा आत्मा का निश्चय होगा कि जितना ये परमात्म स्वरूप आत्मा है ज्ञान स्वरूप मात्र ज्ञान स्वरूप है ऐसा निश्चय होते ही आत्मरुचि उत्पन्न होगी। उपदेश में तो उपदेशात्मक वचन व्यवहार होता है किंतु जिसको ज्ञान मात्र ऐसा आत्मा है ऐसा निश्चय होता है उनको आत्मरुचि तीव्र हो जाती है अनन्य आत्मरुचि उसको उत्पन्न हो जाती है ऐसा नहीं। दूसरा पद ये न लिया कि जितना ये सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है पहले आत्मा लिया अभी आत्मा का कल्याण लिया। पहले तुमने सत्य आत्मा कितना है जितना ज्ञान है और कहते हैं कि तेरा आत्म कल्याण कितना है कि जितना ज्ञान है तेरे ज्ञान पद को छोड़ करके कहीं भी आत्मकल्याण नहीं है। इसलिए हमारे आत्मकल्याण के लिए हमारे ज्ञान पद में ही हमें संतुष्टपना संतुष्टपना का मतलब क्या यहाँ वो संतोष भक्ति का बात नहीं है। दूसरी जगह कहीं हमारे कल्याण के लिए प्रयास नहीं करना सिर्फ ज्ञान में ही हमारा आत्मकल्याण समाविष्ट है ऐसा निश्चय कर लेना और ऐसा निश्चय करके कहीं और जगह कल्याण के लिए हमारा मिथ्या प्रयास न हो तथा प्रयास न हो ऐसा कहने का अभिप्राय है। कल्याण में आत्मशांति की प्राप्ति आत्मिक सुख की प्राप्ति आत्मा आत्मा के आनंद की प्राप्ति आत्मकल्याण मैंने हमारे किसी भी प्रकार के दुख की उत्पत्ति न हो और सर्वथा सर्वदा सुख की उत्पत्ति हो सर्वथा और सर्वदा दोनों प्रकार से सुख की ही उत्पत्ति हो ऐसा कहाँ से होगा ज्ञान में से होगा। ज्ञान जितना कल्याण है जितना ज्ञान है उतना ही कल्याण है। एकदम इसको शॉर्टकट कहते हैं ये आराधना का विषय है। जैसे आपको आराधना तो होती है तो आराधना के विषय में कोई लंबी थोड़ी बात नहीं है क्यों कि हमारा स्वरूप और इसमें लगने वाला हमारा परिणाम बीच में कोई राग नहीं फिर अन्य चीज का तो सवाल नहीं रहता बीच में कोई राग विकल्प भी नहीं है। तीन आने परिणाम उसका उसके वेद से दस्तर के स्वरूप पर लग जाता है, आ जाता है, बस आराधना है, वो भी उसी वही कल्याण हो, वही कल्याण है, दूसरा कोई कल्याण का स्वरूप नहीं। हम हमारे आत्मा में लीन रहे, यही हमारा कल्याण है। आत्मा में लीन रहे तो आत्मा समझ में नहीं आए तो ज्ञान में लीन हो रहे ऐसा हो, बस आगे का
आत्मकल्याण की बात को बाद में क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया?
हाँ, पहले तो बताया कि आत्मा कैसा है, ऐसा बताया। आत्मा को जाने बिना या जिससे हुए बिना फिर इसमें संतुष्ट पड़ा, उसका कल्याण कैसे हो, वो बात आएगी। पहले तो हमारा स्वरूप कैसा है उसको जाने बिना हम हमारे कल्याण करना है, वो बात था तो बात होने वाली ठीक है। ये प्रश्न जो है आपका वो क्रम का है, तो क्रम में क्या है कि सर्वप्रथम स्वरूप निश्चय करना है, फिर परिणाम अंतर में आ सकता है। हमारा स्वरूप इतना महान है और अद्भुत से भी अद्भुत है, हम अद्भुत से भी अद्भुत है, ऐसा स्वरूप ज्ञान में आने पर, ऐसा स्वरूप भाषित होने पर, ऐसा निश्चय होना कहें भावभाषण होना, विकल्प से निश्चय होने की बात नहीं है। हमारे स्वरूप के प्रति हमारे परिणाम आकर्षित हो जाएंगे और हमारे स्वरूप में भी हो जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसमें तुम्हारे इसमें क्या लिया है, पहले हमारे आत्मस्वरूप का निश्चय हो, फिर हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा, स्वस्थमुख होगा, क्योंकि उपयोग को अंदर आने में कोई हिसाब का कारण तो चाहिए, पर जहां भी उपयोग लगता है वहां कोई हिसाब का कारण इसलिए लगता है, तो सबसे कोई हिसाब का मुख्य कारण है तो ये सुख है। सुख के निश्चय से उपयोग वहां चला जाता है, सहज चला जाता है, तो उसके निश्चय पर कोई जबरदस्ती करनी पड़ती नहीं है। उपयोग को अंदर ले लिया, मैं अंदर में उपयोग लाऊंगा, उपयोग में बाहर में अंदर में उसको विकल्प करना पड़ता नहीं। ऐसा चैतन्य मूर्ति आत्मा ही ऐसा महान है भीतर में, अगर उसका भाव भाषण हो गए तो भी एक हिसाब चालू हो जाता है। अनुभव में तो उसका साक्षात्कार है तो अनुभवी को तो उसका चिंता व्यवहार करे, उसमें तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अनुभव नहीं हो, अनुभवान हो, क्या भाव भाषण में तो क्या होता है, अनुभवान होता है तो भी अंदर सुख का भंडार है वो दिखने में आ जाता है। तो परिणति को जो अनंत काल से जो परिणति सुख के लिए भटकती थी, सारे जगत के पदार्थ पर भटकती थी, लेकिन कहीं सुख था नहीं, इसलिए मिलता था भी ना, जगने मिलता भी नहीं था। जब वास्तविक सुख का और अनंत सुख का भंडार अंदर में भरा है ऐसा एहसास होता है तो उपयोग को अंदर आने में देर लगती। इसलिए क्या कहा दूसरे पद में, इतना ही सबके कल्याण है, कल्याण है इसमें ढूंढना, सबके सत्यता है विशेषण लगा हम लोगों ने सत्य शब्द का बहुत सीमित अर्थ लिया है। सत्य में है सच्चा, तो झूठ नहीं बोलता है, सच्चा बोलता है, तो कैसे सत्य बोलता है। और सत्य धर्म में भी वही परिभाषा करी है हमारे यहाँ। वास्तव में भाषा ज्ञान में वो सब सत्य शब्द कैसे आया है, सत्ता का पूर्ण को सत्य कहते हैं क्या, सत्ता का पूर्ण को सत्य कहते हैं। जैसे आत्मा में स्वभाव में चेतनता है, तो स्वभाव में चेतनता है उसका गुण को हम चैतन्य कहते हैं क्या, चैतन्य जैसे सत्य ऐसे बनता है, ऐसे संजय से बनते हैं चेतना पर से चैतन्य, सत्ता पर से सत्य, कल्याण की सत्ता कहाँ है ऐसा कहते हैं, अपने कल्याण की सत्ता कहाँ है, अपने कल्याण की सत्ता हमारे यहाँ और कोई जगह इसका बुजुर्ग ही प्रकृति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारा कल्याण यहाँ ही है और जगह, फिर हमारा कल्याण और जगह नहीं है तो हम क्यों वहाँ बेकार उपयोग को लेना है, उपयोग लेना यहाँ जाने की कोई आवश्यकता देखे तो विश्वास आएगा, बिना देखे विश्वास नहीं आएगा। हनुमान से भाषित हो गया लेकिन निकल गया तो फिर विश्वास कैसे आएगा, ये समस्या का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। विश्वास कैसे करते हैं, बात में विश्वास कैसे करते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं दिखता है तो भी विश्वास कर लेते हैं, नहीं कर लेते कल्पना मात्र है। बुद्धिमान इंटेलिजेंट आदमी था तो बहुत साफ सुथरा दुनिया भर का आए तो पढ़ा था, पंद्रह जैसे जैन साइड नहीं पढ़ा था, बाकी सभी धर्मों का पढ़ किया था ऐसा कहते हैं। तो जिसमें जो हमारे पहचान वाले आ रहे हैं क्योंकि इनके साथ कोई बात करो तो हमको भी थोड़ा ज्यादा बहुत बुद्धिमान है, दुनिया भर के धर्मों के ग्रंथ ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो मैं तो सुनूंगा कि जैन शास्त्र भी पढ़ लिया होगा, पहला प्रश्न को ही पूछा कि जैन शास्त्र पढ़ाया तो मैं नहीं पढ़ा, दुनिया भर के पढ़े इनको कोई बात नहीं। हमारा तो एक प्रश्न है कि हम लोगों ने सुख कहाँ देखा है, वो थोड़ा होता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सबको एक शरीर का होना चाहिए, सकल भी एक शरीर का बना दो, सकल भी एक साथ बना दो, बॉडी भी एक साथ बना दो, अगर मकान एक साथ बनाना है तो लश्कर रंग के एक साथ बना दो क्या होगा, कोई नहीं सुनता। बात को नहीं मानते, उसकी बात को मानने वालों को बहुत उदाहरण देते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी प्रकृति को विकास को रोकने वाला ये धर्म है, धर्मांध लोग कोई प्रगति नहीं कर सकते। आपने तो विज्ञानी को बात करेंगे, साइंस तो आज कल इसके लिए तो कुछ तो कोई घृणा ही नहीं चाहिए, धर्म की घृणा हो सकती है लेकिन विज्ञान की तो घृणा नहीं हो सकती है। तो आप बताइए, जिसको उनको मानने वाले हैं तो आपने क्या सुख को मटेरियलाइज किया है, भाई भी मटेरियलाइज करके मैं एक प्रश्न उठाया है, कहाँ देखा आपने? आप भी दौड़ते हैं, अमेरिका वाले भी दौड़ते हैं, भारत वाले भी दौड़ते हैं, किसके पीछे दौड़ते हैं कि हमारे पैसे बढ़े, हमारी समृद्धि बढ़े, हमारे सुख साधन के जो भी संयोग है वो बढ़ते रहे, लेकिन बिना मटेरियलाइज किए बिना वो दौड़ कैसे लगी, कैसे चलती है? आप तो बुद्धिमान आदमी है, बताइए कुछ। देखना है देश को, देखना है कि आप व्यापारी जैसे कपड़े पहनते हो लेकिन व्यापारी को नहीं दिखते, देखने से क्या, देखने से क्या वास्ता है इसका, कुछ देखने से वो वास्ता है। मेरा तो ये प्रश्न है, दुनिया भर में घूम चुका आदमी है, कपड़े कपड़े सब जाता है, दुनिया देखती है, मेरा तो ये जनार्दन का प्रश्न है, ये मोटी धाती है, सभी मटेरियल है, तो वो तो क्या है, इतनी दौड़ कैसे? आप अंधश्रद्धा को धिक्कारते हैं क्या? आप तो अंधश्रद्धा को धिक्कारने वाले हैं, तिरस्कार करते हैं बड़ा, क्या आप अंधश्रद्धा में नहीं है क्या? इस विषय में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे 1500 साल पहले हमारे भारत में ये बारिश बरसात आने के लिए यज्ञ किया जाता था, बड़े बड़े राजा श्रीमंत लोग भी यज्ञ करके इसमें पशुवध करके निशा करके उसमें भोग भवन करते थे, वो अंधश्रद्धा थी? हाँ, तो अंधश्रद्धा तो इसकी अंधश्रद्धा में और आपके अंधश्रद्धा में क्या अंतर है बताइए? जैसे बारिश नहीं आ सकती जैसे किस चीज में से सुख आता है बताइए? तुझे क्या आपने इतना जोर से कि मारा है तुझे कि 1500 साल पीछे निकल गया मुझे तो कैसा चीज लगा? ये ऐसी दुनिया चलती है, बुद्धिमानों की दुनिया ऐसे चलती है, क्या हाल है इस तरीके का? इसमें सूत्र की समस्या जो है वो साइंटिफिकली तो उसके समाधान किया है, उसका कोई सुना मिलेगा आपको, आप जरूर करूंगा मुझे आज तक मिलिए, मुझे भी पढ़ना है और मैं मॉस्को की लाइब्रेरी में भी भेजूंगा, शुरू में तो दिए थे समय सार प्रवचन सार नियम सार अंतरिकाय चरित्र सेट जो भेज दिए थे पढ़ना, तो कभी मौका मिले तो बात करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ये तो गड़बड़ी है मुझे मानो कि बड़ी गड़बड़ी है हमारे यहाँ। बात तो चले विश्वास में कि हम लोग विश्वास के लिए करते हैं, इतना बड़ा धोखा खाते हैं, इतना बड़ा धोखा खाते हैं, बहुत बड़ा धोखा खाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, मिलता तो नहीं है लेकिन दुख होता तो भी हमारी शांति में नहीं आती है। जैसे कि जो दरवाजा नहीं था खिड़की नहीं थी, वहां से बाहर निकलने के चाहे दीवार में से बाहर जाना चाहे क्या होगा? क्योंकि हमारा सर टूटेगा, फिर भी हम वहां जाए निकलना है यहाँ से, यही हालत है हमारी सुख रहेगी। आपको उसका बुद्धि है कि भाई हमारी अक्सर ठिकाने पे नहीं आती, फिर उधर माथा फोड़ते हैं, हमारी समझ में क्या समझ को क्या हो गया है, कोई समझ में नहीं आता है कि समझ को क्या हो गया है। तो सच्चा सुख के लिए हमारे खोज जो होनी चाहिए, जिस अनुपात में होनी चाहिए, उस अनुपात में नहीं हो रही है। और ये ट्रेजरी करो, करुणता करो, तो वो है कि जिसने वो बात सुनी है नहीं है वो तो कोई शायद नहीं कर सकते, लेकिन सुनी है वो कुछ नहीं करते हैं, इससे बड़ी करुणता कौन सी हो सकती है। समुद्र में, नदी में, तालाब में तो आदमी डूब सकता है, लेकिन सुल्लू भर पानी में गए अगर डूब जाए तो फिर ये तो मानने की चीज नहीं होती। गरीब तो मानने मानेंगे नहीं के कैसे ये हालत सुने हुए लोगों की देख करके ज्ञानियों को फरमाए कि भगवान समुद्रदाता जैसे महामुनि महान आचार्य थे, ये तो क्षण क्षण में अपने आत्मा में लीन होते थे। उनको भी कर्म आ गई, शास्त्र लिख दिए, होंगे बैठे बैठे भी शास्त्र सारे प्राणी बहुत दुखी हो रहे हैं। विश्व के प्राणी जितनी करुणा हमारे पे हमारे श्री गुरु ने की, अब गुरु कुल में हुआ गए उतनी करुणा जितनी अपने आत्मा की करुणा पहले आई, उतनी करुणा सभी आत्मा पर विकल्प के काल में आए बिना नहीं रहती। कृपाल जी का पत्र है जितनी जैसी वृत्ति हमको हमारे आत्मा के प्रति है, वैसी वृत्ति हमको जगत के सभी प्राणी के प्रति है। अच्छा लिखा है कोई अंतर, अगर हमारा आत्म कल्याण हम चाहते हैं अगर सारे जगत का आत्म कल्याण हो जाए, ऐसी भावना आती है।
पुरुषों का संप्रदाय जो है वो अलग होता
है, उसका संप्रदाय होता है। विश्वादी दिनेश्वर को लेकर के सभी संतपुरुषों का एक संप्रदाय हुआ। इस जमाने में उन्होंने क्या किया कि अगर किसी आत्मा का हित होता हो, इस तो उसके लिए एक क्षण भी देर नहीं हो, उसका कारण मिलाने में भी एक क्षण की देर न हो, और उसके कारण के कारण मिलाने में भी एक समय मात्र के देर न हो, ऐसी भावना जिसको होती है ये सत्पुरुषों का संप्रदाय है। ऐसा करते हैं उनके शब्द तो बहुत अतिशय जिसमें हो ऐसे शब्द हैं उनको उनको बहुत बढ़िया बात है। इसमें से कल्याण की बात आई है,
विमुक्ति की सुविचारना में क्या है? ये तो सत्पुरुषों का बात है, विमुक्ति की सुविचारना में क्या है?
विमुक्ति की
सुविचारना
सुविचारना विचारना नहीं लेकिन सुविचारना, जिसको इस मार्ग में जाना है उसमें तो उसी लाइन की ही विचार भरा होगी, आत्मकल्याण की, के कल्याण की, अपने कल्याण की, और सकल कल्याण मार्ग है। कैसा मार्ग है? सकल कल्याण, अपना भी कल्याण होता है, पर होते होते दूसरे को कल्याण में वो पसंद में पड़ जाते हैं, ऐसी बात है। पर तू तो नहीं है, दूसरों का कल्याण कर दो वो बात नहीं हो जाता है। ये तो विचार आता है तो बहुत लगता है, बहुत ये तो मेरा ऐसे जंगल में रहने वाले तो वो तो अपने आत्मा में से बाहर निकलने नहीं चाहते थे, इतने अंदर शांति मिलती थी, सुख मिलता था, आनंद मिलता था, तो बाहर निकलने के लिए वो आलसी हो जाते थे। और उनको मंथर ऐसा शब्द लिखा है, आलसी हो निकलना नहीं चाहे, निकल गए फिर भी नहीं चाहते हुए भी निकल गए। तो इनके विकल्प में से जो संरचना, विकल्प के निमित्त से जो संरचना हुई, एक तो विकल्प है वो साधना से काम करते हुए, इसके निमित्त से शब्द में शास्त्र बने, इसके निमित्त से दूसरों का कल्याण होने लगा। लोग कितना पावर है, साधना का पावर कितना है, आत्मकल्याण का पावर कितना है, विकल्प में आएंगे तो वही साधना की बात करेंगे। जिस साधना हम आराधना कर रहे हैं इसकी बात करेंगे। क्या लिखा है, इतना ही सत्य कल्याण है, ये कल्याण की बात लिखा कि नहीं लिखा, जितना ही ज्ञान है वो आराधना करते करते लिख रहे हैं। हमारा संवेदन में हमारी आराधना वर्तमान में ही चल रही है, और सत्य सत्य इसमें कलम डुबो करके लिखते हैं तो उतना नहीं कल्याण, सत्य कल्याण है, कल्याण की सत्ता इधर और नहीं है। बस उन्हीं संतों से कहीं कहीं आत्माएं महात्मा हो गए। क्या हुआ, गुरुदेव प्रभु के साथ महापुरुष सुन गए कि कहीं पर कल्याण होने के लिए, अभी तो बनते गए, आगे जा करके कीर्तन करके भव में कईयों का कल्याण हो जाएगा, अकेले नहीं जाएंगे। कीर्तनकर अकेले मोक्ष में नहीं जाते, साथ में अनेक 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 जीवों को सतही जाना हो जाता है, फिर आरो पाता है कल्याण कर दिया। जिसके वचन योग में ऐसा निमित्तत्व पड़ा है कि दूसरों का कल्याण हो जाए, इसकी आराधना की बात क्या करें, इसकी आराधना की बात क्या करें, कैसे करें, तो इसके लिए तो माता को खुद को कहना पड़ेगा कि मेरे में शक्ति नहीं है। माता को भाषा दी जाए तो क्या बोलेगी, मेरे में उसको बताने के लिए कोई शब्द या शक्ति नहीं
है। वचन योग में इतना पावर है तो प्रत्यक्ष योग में कितना पावर हो,
प्रत्यक्ष योग की तो बात ही अलग है। इसलिए तो मुझे कहते ऐसे कोई भावनी के संत का दर्शन हो जाए तो हमको इसके पीछे निकल जाए, कल्पना इसके पीछे पीछे भावना इधर दर्शन नहीं होते थे, तो इसके योग में ऐसे महापुरुष को भी सराह के बीच में रुदन आता था, आंसू गिरते थे, ये देखा नहीं। प्रत्येक योग में तो बिना बोले ही आत्मकल्याण हो जाए, क्या इसके योग से आत्मकल्याण हो जाए, बड़ा था आपने250 पत्र में वो बात लिखी तो इसीलिए लिखी है कि कहीं शांत पढ़ने वाले को भी ये भूल हो जाती है, तो हमने सब कुछ सुना और इसकी माने तो हमारे पास है जो छात्र जो मौजूद है, तो भी होंगे तो बात तो कहेंगे और क्या कहेंगे, इसकी आत्मा तो हम कुछ सकते नहीं, हम उसको सुन सकते नहीं,
क्योंकि जिसकी वाणी से हम समझते हैं तो ये वाणी तो शास्त्र रूप है हमारे पास, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर वो मौन रहे तो उसमें से आत्मस्थिर का रूप आत्म समाधि का योग हो जाता है। बिना बोले इसका मौन निर्मित पड़ता है, जिसका मौन निर्मित पड़े इसकी वाणी किसके लिए निर्मित के लिए क्या बोलना क्या कहना निर्मित पड़े निर्मित पड़े कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मौन भी नहीं पड़ सकता है, ऐसा होता है। तो वैसे यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम कहीं अपना आत्म कल्याण की सत्ता खोजने जाओगे, मौजूदगी के चाहिए का आत्म कल्याण कहाँगे ज्ञान है क्या, ये अनुभव की बात नहीं आ रही। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ज्ञान में भी स्वयं का संवेदन हुए यही अनुभवनीय है, ऐसा लिया यही अनुभव ऐसा पड़ा एकावत एवं सत्यम अनुभवनीयम यावत एक ज्ञान ऐसा लिखा है। क्या लिखा? एकावत एकावत एवं इतना मात्र ही सत्यम अनुभवनीयम सत्य अनुभव करने योग्य सत्य जितना ही है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर स्वयं को अनुभव करके अनुभव की तृप्ति ले लें। दूसरे दूसरे जगत के पदार्थ के अनुभव करके तुझे कभी तृप्ति मिली नहीं, क्यों नहीं मिली? कि अनुभव कर ही नहीं सकता था। अनुभव हुए तो तृप्ति होवे ने, अनुभव हो ही नहीं सकता। दूसरा पदार्थ का अनुभव हो ही नहीं सकता, राग का अनुभव हो ही नहीं सकता। और राग किसी भी सुहाते हुए राग में भी तृप्ति नहीं मिलेगी, इसका यही कारण है कि ज्ञान राग रूप हो सकता नहीं। जैसा ज्ञान परग्रह नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह ज्ञान राग रूप नहीं हो सकता। कल्पना बना ले कि हमारे लिए ये ठीक है, लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है, अतृप्त रह जाएगा आत्मा। तृप्त रहता है संवेदन आते ही तृप्ति मिलती है। तो आचार्य महाराज फरमाते हैं कि इससे तृप्त हो, इससे ही तृप्ति तुझे मिलेगी, और जगह से तृप्ति मिलने वाली नहीं है। क्या कहा? इतना ही सत्य और अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। इसलिए अनुभव के लिए मानुभव के लिए ज्ञानम एकम साधनम सानुभूति एक हेतु का सानुभूति का एक कारण मात्र है, कार्य मात्र है। जो भी कुछ जो सब कुछ है वो ज्ञान में ही है। इसलिए ज्ञान का ही अनुभव कर और कुछ अनुभव मत कर, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत हो, सदा ही आत्मा में आत्मा ज्ञान को आत्मा जानकर या आत्मा को ज्ञान जानकर उसमें ही रत हो, उस आत्मा में ही संतुष्ट हो और ज्ञान पर बदल कर आत्मा ले लिया, क्योंकि ज्ञान सुई है आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। बाकी कोई आत्मा के लिए और विवेक के ढूंढने की जरूरत नहीं है। आत्मा में ही संतुष्ट हो और आत्मा को भाव से संतुष्ट हो, ऐसे तृप्त होने पर उसको वचन अभोज सुख प्राप्त होगा। ऐसा सुख प्राप्त होगा कि जिसको कहने के लिए भाषा में सामर्थ नहीं है, वचन अभोज सुख है, वो सुख शब्द से मात्र उसका संकेत किया जाता है या संज्ञा दी जाती है, इससे आगे हम कुछ कह सकते नहीं है। अगर कहना चाहे तो हमको नास्तिक से कहना पड़ता है। क्या? कि जिसमें कुछ भी दुख न हो उसी का नाम दुख ना आकुलता। आकुलता बिल्कुल नहीं हो, आकुलता का अभाव हो जाए उसका नाम तो नास्तिक से बताना पड़ता है। अस्तित्व है एक शब्द है सुख, बाकी कहने की कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ मिलता है कुछ। आचार्य महाराज को प्रचुर सुख में डूबते थे, जिसने लिखा है अमृतचंद्र आचार्य महाराज वचन बोलकर सुख कैसा लिया, वचन अगोचर, तो वो तो प्रचुर सुख में विराजमान थे। क्योंकि लिखना क्या पड़ा, ये वचन अगोचर है। हाँ, उतनी बात जरूर है प्रत्यक्ष योग में, क्या जैसे गुस्सा आता है तो बिना बोले समझ जाते हैं, लगते हैं कि बहुत गुस्सा आ गया है, बोलते नहीं है तो भी लगता है, पता चल जाता है। प्रसन्नचित्त तो होते हैं तो भी पता चल जाता है, क्या बात मुझे बहुत प्रसन्नता दिखती है। प्रत्यक्ष योग से तो जो भाव बता नहीं सके भाषा में, वैसे भाव चेष्टा से दिखने में आता है। भाषा से शब्द से सुनाई देता है, सिर्फ सुनाई देता है और उधर को दिखाई देता है, इस सुनने से हम विचार में कुछ भाव को ला सकते हैं, लाते हैं या लेकिन जो प्रत्यक्ष योग में तो सीधा ही विजुअलाइज हो जाता है, भाषण आ जाए ऐसा है। कोई विशिष्ट नहीं तो नहीं के प्रकार है जो ये प्रत्यक्ष योग में बनता है। ये जंगल में विराज है, ज्ञानस्थ अवस्था में विराजमान होते हैं, उतनी शांति उनके मनोरथन काया के योग में से झलकती है, झलकती है। झलकती क्या है, झलकती है तो आदिम चित्ता जैसे क्रोधित प्राणी, क्या देखते ही दूसरे को देखते उनको प्रकट के क्रोध आ जाता है, शांत हो जा करके इनके पास को भी बैठ जाते हैं, दर्शन करने लगते हैं, क्या बोलती है ये शांति की बोल, ऐसी अलौकिक शांति छलकती है बिना बोले, बोले तो और बार आ जाए, ऐसा बनता ही नहीं रहते थे। ऐसे हिंसक प्राणी, क्रोधी प्राणी, सर पलिगर इन सब क्रोध से जन्म पाए, ऐसे ऐसे क्रोधित प्राणी उसकी बहुत क्रोध की प्रकृति फिर हो जाने से ऐसे ही भाव में उसका जन्म होता है, वहां और फिर उसको करने का बनता रहे और फिर लड़का भी चले जाते हैं। ऐसे प्राणी भी शांत होकर बैठ जाते हैं। प्रत्येक योग में उतना आतिशय है, उतना आतिशय है कि जो भी जो की प्रकृति को भी शांत कर जाता है। और दूसरे प्राणी में उनको भी इतना बनता है तो अपनी प्रकृति की तो क्या मजा करके आत्मा को कुछ कर सके। हमारी तो प्रकृति ऐसी है, हमारी तो प्रकृति ऐसी है, उनको लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना, लेकिन क्या करें हमारी प्रकृति है। अरे क्या प्रकृति है ये प्रकृति, आत्मा के आगे कुछ नहीं है। तो भाव अस्तित्व ग्रहण हुआ तो प्रकृति जोर नहीं खाएगी, नहीं खाती। अगर थोड़ा वो आ जाएगा तो पता कैसे, वो कोई पैर फेंक करके उसको पता है, ऐसा ज्ञान मौजूद हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा, तो प्रकृति जोर खाने वाली नहीं है। कैसी भी प्रकृति हो, प्रकृति सब दोषित है, सब संतोष का यह नहीं प्रकार है, असंख्य प्रकार है, अन्य प्रकार है, एक भी ताकत वाली नहीं है। आत्मा की ताकत के आगे इसकी कोई ताकत नहीं है। दूसरे ऐसे जो भी प्राणी भी शांत हो जाए, ये तो स्वभाव मर्यादा में बाहर आया है। क्या कितनी मर्यादा में बाहर आया है वो है, अनंत में बाहर आया है। अब देखिए आत्मा कितना कितना समृद्ध होगा, स्वभाव में कितनी सामर्थ्य होगी, जितने जिससे अनंत में भाग में भी एक राज्य पूर्व प्रकृति कितनी शक्ति, कितनी शक्ति क्या उसका वास्तविक भ्रमण हो जाता है, तो है पता ही नहीं पड़े कि कहाँ कैसे चली गई। ये पानी का हवा हो जाती है ना, धूप पड़ती है, तेज पड़ती है, तो कहाँ के कहाँ वो पानी चला गया जैसे पता नहीं चलता है, ये प्रकृति गायब हो जाती है, कहाँ कैसे चली गई पता नहीं चलता है, ऐसा वास्तविक भ्रमण हो जाता है। उनको ही आश्चर्य लगे, अरे मेरे पहले ऐसा होता था, अब कुछ होता ही नहीं है, क्या बात है, ऐसा होता है शरीर मात्र में, रगत मात्र में ही ऐसा होता है। इतना बहुत सामर्थ्य भरा है हमारी आत्मा में, इतने सामर्थ्य भरा है कि जिसका कोई हिसाब हम लगा ही नहीं सकते। ये सब कहते हैं तो इसका हिसाब हिसाब किताब तो लिख नहीं सकते है। ये जो बात दृष्टांत में आती है उसमें दृष्टांत का नाम निकलता है, हमारे स्वभाव का नहीं निकलता है। तो गिनवाने के लिए उपमा लता नहीं देते रख, आप बातें नीचे मती मपाई गए हानि है, उपमा आपका हमने तो मती मपाई गई, तो किसी यहाँ स्वभाव को दिखाने के लिए कोई दृष्टांत देते हैं तो दृष्टांत का नाम है, स्वभाव का नाम इसमें नहीं आता, ऐसी चीज है। तो ऐसे कहते हैं कि सुख ऐसा है, स्वभाव में कितना सुख है कि जैसे आत्मा पूरे पूरा ज्ञान स्वभाव वाला है, वैसे पूरे पूरा सुख स्वभाव वाला है, उतना सुख भरा है, उतना सुख भरा है कि वो उभर के बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा, सारी दुनिया इसके आगे कुछ नहीं है। गुरुदेव बता देते हैं लोगों क्या केंद्र विषय में सुख है, तो कहते थे कि इंद्र को अपना वैभव जो है, इधर तो कुछ नहीं है, इसके आगे तो यहाँ के बड़े बड़े मल्टी बिलियन में सौ तो भी गरीब से गरीब है, उतने समृद्धि वाले इंद्र है, उनको अपनी संपत्ति कैसी लगती है, एक दिन का जैसे लगती है, वो भी सड़ा हुआ हरा भरा नहीं, वो भी सड़ा हुआ निकम्मा हो गया, इसका इसके पर पैर चलते तो चलते चलते कैसा हो जाता है, ऐसे उनको अपनी संपत्ति लगती है, तो उधर में इंद्र जो पुण्य दृष्टि होते हैं उनको ऐसे अपनी संपत्ति का मूल्य है, ऐसा अपना भीतर में सुख का आस्वाद आता है, तो ये सब बताने के लिए कभी दृष्टांत का नाम निकलता है, फिर भी स्वभाव का नाम निकलता ऐसा वचन गोचर है। अगर निकल जाए तो वचन गोचर हो गया, लेकिन आचार्य नाम आपको कहना पड़ता है कि वचन गोचर है।
लेकिन सत्पुरुष का सुख कैसे देखे?
सत्पुरुष का नजर पाएंगे उसमें जो सुख के लालय तो हो पहले कैसे दिखे, जो इस सुख के लालायक होंगे उसको दिखेगा। दिखाएगा थोड़ा भी कहने के मतलब क्या है, इतना 10-15 मिनट भी ऐसी बात कहने का मतलब क्या है, क्या प्रयोजन है? तो क्या ऐसा सुन के भी इसके लिए तो लालायक होते हैं क्या? अगर लायक भी होगा तो उसके लिए लालायक हो जाएगा, उसकी खोज चलाएगा। खोज करने वाले को दिखता है, बिना खोज करने वाले को कभी नहीं दिखता। लिखा है दो सुखों में लिखा है, सत्पुरुष की पहचान कब होगी? के पहचान करने की तीव्रता आएगी तब होगी। अगर पहचान के लिए तीव्रता नहीं आएगी तो बगल में बैठे होंगे तो हम सामने भी देखेंगे ये बात हो जाएगी, और तीव्रता होगी तो 1000 का 5000 के दूर होंगे लालायक हमको मान जाएंगे, ये बात हो जाएगी। तब हमको पड़ोस में हो गया तो भी उपेक्षा हो जाएगी, और उस सुख को उसी क्षण तुम्हें संगे देखेगा क्या बोला, निश्चय होते ही उस क्षण को उसी सुख को उसी क्षण बुझाएगा नहीं है, उसी क्षण क्षण अभी अभी वर्तमान में ही एक समय का उदाहरण उसमें नहीं है, कैसे उसी क्षण को ही सुनिए उसको देखेगा, दूसरों को महत्वपूर्ण कहते हैं क्या बोले, मान प्राप्ति ही ऐसा संस्कृत शब्द पड़ा है। संस्कृत में तो बहुत भाव है, भाषा की समृद्धि को देखा गया है, तो विश्व में कहीं संस्कृत जैसी भाषा समृद्ध भाषा कहीं नहीं है। कि बताओ हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका शब्द को सबसे बड़ा है वो कितना बड़ा है, उसका वजन है 2 टन, कितने 2000 किलो, उठाने के लिए 8 आदमी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए 8 आदमी चाहिए, बहुत सुंदर एक भाव को दिखाने के लिए 20-25 शब्द अदरवर्ड मिल जाएंगे उसको। क्या आपको हाथ कहेंगे, हस्त कहेंगे, कर कहेंगे, पानी कहेंगे, पानी ग्रहण कहता है पानी, वो पानी नहीं है पानी, मैंने हस्त एक वाचक के लिए 25-50 शब्द मिल जाएंगे उसका भाव की, भाव की अभिव्यक्ति संस्कृत में जो होती है जो अन्य भाषा में कोई एक शब्द कैसे भाव भी मिलेंगे, और यहाँ तो भाषा का जब बात कर रही है भाव के भी चल रही है, तो कहते हैं कि एक चीज के लिए 25-50 शब्द उस भाषा में है, और भाव को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड जिस होते हैं कहाँ समझ गए, तो संस्कृत में मिलेगा इतना कोई भाषा नहीं। मान्यान प्राक्षी, प्राक्षी को अपना पूछने के लिए तुझे कौतूहल होता है, उत्साह आता है, ये सुख कैसा होगा, ये सुख कहाँ मिलेगा, कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कहता है वैसा तू कर ले, तेरे ज्ञान में सुख का समुद्र सलकता है, उछलता है, अभी अभी अनुभव में आ जाएगा, अभी अभी अनुभव में आ जाएगा। दूसरे को पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम क्या चीज, तो पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। आचार्य महाराज ने परमात्मा को किया है, प्रेरणा तो दी है लेकिन आशीर्वाद भी दिया है आगे जाकर के, तो ऐसा कर तुझे हो जाएगा, मैं कहता हूँ तुझे हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। तो समय साहब सबको सुनने को आया है, रवि अवसर को सुनने को आया है, तो सभी प्राप्ति हो जाएगी, तुझे कहीं खोजना पड़ेगा नहीं, तेरे में से तुझे अचलोचर सुख की प्राप्ति हो जाएगी और हो ही जाएगी, हुए बिना रहेगी, लेकिन हमारा आशीर्वाद है। वह अपने को ही अनुभव दूसरा है, दूसरे को क्यों पूछना पड़ेगा, जब प्रत्यक्ष अनुभव में आएगा, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष सुख है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, तो वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज संक्षेप में कहेंगे कि ज्ञान मात्र आत्मा में ही होगा। देखिए आज बड़ा दिन है, गाथा भी बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद भी श्री गुरु का बहुत बड़ा आ गया सामने। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उससे उसमें संतुष्ट होना और उससे तृप्त होना, यही कर्म ध्यान है। कहीं विपश्यना शिविर में जाना पड़ेगा नहीं, कहीं योगा में जाना पड़ेगा, ज्ञान मात्र में लीन होना, संतुष्ट होना, तृप्त होना, ये ध्यान नहीं है किंतु कर्म ध्यान है। ज्ञान नहीं है किंतु कर्म ध्यान है, उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और कोई ही समझ में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। संकट का रहने के काल 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 में रहा, इधर तो अल्प काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी होगी और होगी ही होगी, ऐसा है। काल को तो उड़ाते हैं परमात्मा, साधक काल को तो उड़ा देते, संकट काल ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर अनंत चतुर्थ चला गया, अगर इस वक्त हमें इस चीज मिल गई तो हमारे लिए तो ये चौथा आरा से भी अधिक है, सकारा तो नहीं है किंतु चौथा आरा से भी अधिक है, क्योंकि अनंत को कारा चला गया, इससे अधिक काम हो गया, ऐसी बात है। ऐसा करने वाला पुरुष भी तुम सुख को जानता है, मैंने ऐसे करने वाला आत्मा ही पुरुष नाम आत्मा लेना, कोई भी आत्मा है उसको जानता है, उसको जानता है, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं, ऐसा अनुभव करने वाला, ऐसा प्रयोग करने वाला को प्राप्ति होगी, दूसरे का प्रवेश इसमें होने वाला नहीं होगा।